शांति मधुबन इस कर्म भूमि तपस्या भूमि में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इस भट्टी के शुभारंभ में ही भट्टी का लक्ष्य एवं अमृत वेला वरदानों से झोली भरने का जो समय है उसे हम शक्तिशाली कैसे बनाएं, इस विषय को लेकर हमारे बीच आदरणीय शीलू बहन जी हैं। आदरणीय शीलू बहन जी को शुरू से बाप दादा से एक बहुत बड़ा वरदान है जो आपकी मीठी वाणी ने हजारों बाबा के बच्चों को नया जन्म दिया है, नई जीवन दी है, चाहे शिविरों के माध्यम से या जिस समय अभी टीवी से सेवाओं की शुरुआत ही हुई थी तब सबसे पहले टीवी के द्वारा भी बाबा का संदेश पहुंचाने के लिए आप निमित्त बनी हैं। अभी भी मधुबन बेहद घर में तीनों ही कैंपस में चाहे शिविर चाहे भट्टियां, तो आपसे मैं विशेष अनुरोध करती हूँ कि आज भट्टी के तिलक समान विशेष हमें पहले से इस तरह से आप तैयार करें जो यहाँ मधुबन इस तपस्या भूमि से हम बहुत विशेष अनुभूति लेकर के यहाँ से जाएं। आदरणीय दीदी जी, आपका हम एक हाथ से बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। शरीर का नाम कृति बहन है। 44 ईयर्स से बाबा का परिचय मिला है और 36 ईयर्स से यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हूँ और अहमदाबाद सैटेलाइट सेवा केंद्र पर अभी स्थित हूँ। ओम शांति।
आपसे मिलते रहेंगे पूरे 3-4 दिन।
ओम शांति।
विजय भाई का पहले हम स्वागत करते हैं।
बहुत बहुत थैंक्स बहन जी का। आप सब ने कीर्ति बहन से सुना शीलू बहन जी के बारे में, ये बाबा के वो छिपे नहीं प्रत्यक्ष रतन है सारे, जो सारे विश्व को बाबा के ज्ञान के द्वारा उन आत्माओं में दीप जलाकर बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। तो हम सब जींद निवासी भाई बहने किन शब्दों में आदरणीय शीलू बहन का धन्यवाद करें, कैसे इनका थैंक्स करें।
मिलते रहेंगे, अभी तो यही हैं। है? तो हम तो आपके होस्ट हैं, हम तो यही रहते हैं।
तो बहन जी ने तो इतना आप सबको हम सबको भरपूर करके भेजेंगे, अब उस खजाने को आप सब कितना संभाल सकते हो, कितना रख सकते हो, ये तथा ज्ञान से इतना भरपूर करेंगे कि आप संभाल सकोगे तो आप भी कैसे हो जाओगे। हाँ जी, और इसी तरह हम कीर्ति बहन का भी जींद की ओर से, भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये विशेष मुन्नी बहन ने जितनी भी यहाँ सेवाएं भट्टी की होती हैं तो बहन जी का ये कोऑर्डिनेट करने की सेवा मिली है। बहन जी का जींद में भी फोन आया था कि आपके भाई बहन कैसे, वो बहन जी से बात हुई थी। हम आदरणीय कीर्ति बहन जी का भी दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और शीलू बहन जी के तो आप सब ज्ञान रत्नों से इतने सज जाओगे कि सदैव के लिए बाबा के बाद शीलू बहन ही याद आएगी, आभारी रहोगे। ओम शांति।
बाबा ही याद आए, हम याद नहीं आए। याद तो बाबा को करना है ना, कोई देहधारी को थोड़ी करना है। ओम शांति। तीन बार कहेंगे ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा, सभी दादियां, सभी मधुबन निवासी भाई बहने और सारे देवी परिवार की ओर से और हमारी ओर से भी आप सभी का फिर से मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि, जितना गुण गाओ उतना कम, तो ऐसे भूमि पर सभी की ओर से फिर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, अभी से ताली बंद, बस एक हाथ की ताली। हाँ, बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हो जो बाबा के घर में भट्टी करने आए हो। पता नहीं कितनों के नाम आए होंगे, लेकिन आप ही चुने गए, आपका ही नाम फाइनल हुआ और आप यहां पहुंचे। आप में से और भी कई होंगे जिनका नाम भी फाइनल हुआ होगा, लेकिन ऐन मौके पर उनको कुछ काम पड़ गया और वो नहीं आ सके। और ऐसे भी होंगे कि ऐन मौके पर उनको कहा गया आप जाएंगे, फटाफट तैयार हो गए हैं, ऐसे भी होंगे। हाथ उठवाएंगे तो होंगे जरूर, लेकिन जो पहुंच गए वो बहुत भाग्यशाली है। और आप में से ऐसे भी होंगे भाग्यशाली आत्माएं जो प्रथम बार पांडव भवन में रहेंगे, वो हाथ उठाएं। पहली बार, जो पहली बार पांडव भवन में रहेंगे, माना पुराने तो रहे होंगे, अच्छा इतने सारे, और जो पहले मधुबन में रहे हैं वे हाथ उठाएं। अच्छा, दो हिस्सा नहीं रहे, एक हिस्सा पहले भी रहे हैं, तो जो पहले भी रहे हैं वो तो पुराने होंगे, और जो नहीं रहे हैं पहले, माना कुछ सालों में आए होंगे, जब से शांतिवन बना है तो नीचे ही रहते होंगे। पहले तो ये पांडव भवन ही था। साकार बाबा के समय के भी कोई है जिन्होंने साकार बाबा से पालना ली है? कोई नहीं। विजय भाई है साकार बाबा के समय के? आप साकार बाबा के समय के बाद में आए। और विजय बहन, हाँ, वो साकार बाबा से पालना ली है उसने? अच्छा, वो तो नहीं आई ना, विजय बहन तो नहीं आई है ना। तो बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं आप, जो यहाँ अगले तीन दिन पूरे सुबह से रात्रि तक आप भट्टी करेंगे मधुबन में। और ऐसे समय पर आए हो जब यहाँ बहुत बारिश की सीजन है, छाता वाता लाई है सभी, चप्पल ठीक लाए है बरसात का, गरम कपड़े लाए हैं, नहीं जो लाए हैं हाथ उठाएं, अच्छा सभी नहीं, जो नहीं लाए हैं वो हाथ उठाएं, अच्छा देखा विजय भाई क्यों पीछे क्यों बैठ गए आप, आगे आइए, इनको कहा नहीं था कि ठंड होगी बरसात है, कहा था, अब जींद में इतनी गर्मी थी तो क्या सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ थोड़ी ठंड भी होगी, अच्छा सर्दी भी बहुत होती इसलिए यहाँ की कोई ठंडी लगेगी नहीं, अच्छा अच्छा चलो ऐसी भी है, लेकिन हमको अभी भी बताया किसने कि एक भाई है वो उसको तो बुखार हो गया, ये हो गया वो हो गया, वहां से थोड़ा लगा एकदम, और कुछ गर्म कपड़े नहीं लाया है, मैंने कहा मैं पहले यही तो पूछू, अभी भी आ रही थी तो मुझे किसने कहा, उनका पता नहीं कौन है, है कोई जिसको बुखार है वो देखो, हाँ अभी मुझे बताया किसी ने, तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये मौसम यहाँ का इतना अच्छा नहीं है, अगस्त का महीना कहा जाता है डिसगस्ट इंग्लिश में कहते हैं, मना परेशान हो जाते हैं, सारा दिन रात बारिश पड़ती रहती है, और या तो बारिश नहीं होगी तो ये फॉग होगी, लगेगा सूक्ष्म वतन में ही हम विचरण कर रहे हैं, और वो नहीं होगी तो बूंद 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 तो पड़ती रहती है, कपड़े तो सूखते ही नहीं है, तो कपड़े भी इतने लाए हैं जो न सूखे तो भी चलेगा, हाँ धुलाई नहीं करना पड़े क्योंकि सूखेंगे नहीं, बहुत मुश्किल होती है, धूप तो निकलती नहीं है इन दिनों में, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान भी रखेंगे, परंतु मधुबन में आना ये भी एक बहुत बड़ी लॉटरी है, क्योंकि प्यारे बाप दादा मम्मा दादियां यहाँ ही रहती थी, यहाँ ही इनों की तपस्या से कैसे यहाँ के वाइब्रेशंस इतने पावन इतने शुद्ध इतने शक्तिशाली बने हैं, तो ऐसे वातावरण में आप आई हो अनुभव करने के लिए, तो सबसे पहले जैसे ही आप पहुंचे तो आपको ये विजय माला मिल गई, मिल गई ना सभी को, ये विजय माला है और इसमें क्या लिखा है, मौन योग तपस्या भट्टी, तो मानो कि एक प्रतिज्ञा करने के लिए आपको ये माला पहनाई कि हम अगले 3 दिन पूर्ण रूप से मौन योग तपस्या बट्टी करेंगे, है ना शब्द इसके लिए तैयार, और सबसे पहला शब्द है मौन, क्या मौन रह सकेंगे 3 दिन, कि आवाज में आएंगे, क्योंकि ये संकल्प है अंदर पहनना माना, एक संकल्प भी लेना कि हम अगले 3 दिन मौन में रहेंगे, मुख का मौन तो फिर भी सहज है लेकिन मन का भी मौन हो, क्योंकि मन का मौन होगा तो मुख का मौन कोई बड़ी बात नहीं है, पर केवल मुख का मौन होगा और मन का मौन नहीं है तो बात करने की इच्छा तो जरूर होगी, तो जबरदस्ती अपने को रोकेंगे, पर एक ऐसा स्वाभाविक अनुभव हमारा ये 3 दिन हो जो हम कुछ भी सोचे ही नहीं, दुनिया की निगाहों से तो वैसे ही दूर है यहाँ, कोई बाहर की आवाज नहीं, कोई बाहर का झंझट नहीं, कोई मार्केट नहीं, आकर्षण नहीं, कोई टीवी नहीं, हाँ कोई अखबार नहीं, कुछ नहीं, इन सब बातों से परे दुनिया में क्या हो रहा है 3 दिन सब भुला सकते हैं, भुला सकते हैं, घर में आप बता सकेंगे कि अभी 3 दिन हमको कोई फोन ना करे, ऐसे हो सकता है, कर दिया फोन कि 3 दिन फोन ना करो, मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ या कर देती हूँ, अगले 3 दिन ये मोबाइल आपको बंद मिलेगा, ये भी हो सकता है, स्विच ऑफ हो सकता है, जो समझते पर तीन दिन में कोई मोबाइल पर बात नहीं करूंगा वो हाथ उठाए। अच्छा, सभी संकल्प करेंगे और फिर बजेगा तो फिर क्या करेंगे, ले लेंगे आपसे। लेकिन कई बार माताओं की थोड़ी हंसी आती है, अब उसका फोन बज रहा है, पहले तो उनको पता ही नहीं चलता कि मेरा भी फोन मेरी पर्स में बज रहा है, वो समझे कहाँ से आ रहा है। हंसी की बात है ना, किसी किसी का होगा। तो चलो पता चलता, अरे ये तो मेरी पर्स में है, तो वो खोलेगी भी कहाँ रखा है पर्स में मोबाइल, यही पता नहीं चलता, तो ढूंढती रहेगी पर्स कहाँ है। फिर चलो आखिर पता चल गया, अभी उसको कैसे बंद करना वो भी पता नहीं, तो ढूंढती रहेंगी और तब तक मोबाइल बजता रहेगा। तो थोड़ा ये ध्यान रखेंगे, ये खिलौना सबके हाथ में है, सबके पास है ना, कि सब कि है कोई जिसने जो मोबाइल कभी यूज नहीं करता, हाथ उठाए। अच्छा, माताएं हमारी क्या करेगी, ठीक है, अच्छी बात है। भाई तो है, भाई भी है, हाँ थोड़े एक दो बुजुर्ग भाई है, परंतु ये खिलौना हर एक की जेब में है, हर एक की पर्स में है। एक तो एक ये तो एक जैसे आवश्यकता बन गई है, लेकिन तीन दिन यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने घर में आज ही बता दो कि मुझे कोई फोन न करे, बस पहला कदम ये उठाना है। और दूसरा कि अपने अंदर में ये संकल्प करना है कि मुझे यहाँ योग तपस्या करनी है, तपस्या करनी है। हम तपने के लिए यहाँ आए हैं, भट्ठी में पकने के लिए आए हैं। तो जो भट्ठी में कोई चीज पकती है तो क्या होता है, उसका रूप रंग गुण सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। एक बार कोई चीज आग में पड़ी, वो चीज उसी रूप में वापस नहीं बाहर आती, बदल कर आती, क्योंकि आग में वो शक्ति है, शुद्ध करने की भी शक्ति है, जलाने की भी शक्ति है, नरम करने की भी शक्ति है और मजबूत करने की भी शक्ति है। आप कच्चे सब्जी डालते हैं, आलू टमाटर बैंगन होते हैं ना, थोड़े कड़क होते हैं, आग में डालते हैं तो क्या होता है, हाँ नरम हो जाते हैं, सब इतना सुंदर नरम हो जाते हैं, बर्था बना सकते हैं। ऐसे तो नहीं बना सकेंगे बैंगन का, पर आग में डाला तो वो नरम हो जाता। तो कैसे हमारे अंदर जो इतने कठोर संस्कार अगर है भी, जिसको हम कहते हैं पुराने संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं, मायावी संस्कार है, विकारी संस्कार है, वो बड़े कठोर जैसे हैं, पर वो इस योग तपस्या भट्टी में एकदम गल जाए। देखो बजना शुरू हो गया मोबाइल, तो वो इस योग तपस्या भट्टी में एकदम गल जाए, ये भी हो सकता है। तो आज ही ध्यान रखना, सोचना ऐसा कौन सा मेरे अंदर संस्कार है जो बहुत कठोर जैसा है। अभी नहीं बंद करो, अभी बंद करना शुरू करेंगे तो सबकी आवाज बजते रहेंगे, बंद करने की भी आवाज होती है ना मोबाइल के, तो बाद में जाके बंद करना। अभी अगर बज रहा है तुरंत उसको दबाकर स्विच ऑफ तो नहीं करेंगे, पर बंद कर दो, तो देखो भी देखेंगे और कितने बज रहे हैं इसके बाद एक घंटे में। तो इसीलिए जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, जो कठोर हैं, जो समझ से बड़ा मुश्किल है ये संस्कार निकलना। एक भाई था, उसको बहुत जोर से बोलता था, बहुत जोर से आदत ही थी जोर से बोलने की। एक बार मैंने उसको कहा कि भैया अभी एक ही व्यक्ति से बात करें, इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है, इतने के बीच में भी हम तो कितना धीरे बोलते हैं, माइक्रोफोन ही बढ़ा रहा आवाज को हमारी, माइक्रोफोन हटा देंगे तो यहाँ तक भी नहीं सुनाई देगा, बाबा की आवाज कितनी धीमी होती है। तो उसको मैंने कहा कि भाई साहब आप खाली एक ही व्यक्ति से बात कर रहे हैं और इतना जोर से बोलने की क्या जरूरत है, नहीं धीरे से बोले। तो कहता है बहन जी क्या करूं, मेरे माँ बाप ने ऐसा गला दिया है, दोष किसको दिया? माँ बाप को। अब बताओ इसमें माँ बाप का क्या दोष? माँ बाप ने आपको ऐसा गला दिया, यानी वो भी जोर से बोलते होंगे तो वही संस्कार मुझे आ गया है और वही आवाज जोर से ही आवाज बोलने की हो गई है। लेकिन ये तो हमारे हाथ में है ना, अगर हम अपने बोल पर, अपने शब्दों पर, अपनी आवाज पर ध्यान देंगे तो क्यों नहीं धीरे हो सकते। और कईयों की आवाज इतनी कर्कश होती है जो सुनना भी अच्छा नहीं लगता। अब वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं जोर से, क्या जरूरत है? कोई मीठी आवाज हो तो चलो, कोयल की आवाज हो तो कोई बात नहीं, अच्छी लगेगी, पर कौवे की आवाज हो तो अच्छी भी नहीं लगती। इसीलिए पहला ये भी संकल्प करना है कि अगर बहुत जरूरी बोलने की चलो आदत है भी, जहाँ 10 शब्द है उसकी बजाय 2 शब्द, वो भी धीरे से, क्योंकि उसी से बोलना। अभी कोई व्यक्ति यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर जोर से चिल्ला रहे फलाना, जरूरत क्या? आप उसके नजदीक जाइए ना, नजदीक जाकर के आप बोले, इतना जोर से क्या जरूरत है? तो ये भी थोड़ा संस्कार अपने अंदर बदलना होगा। तो जिस जिस में ये आदत है वो थोड़ा इस पर भी ध्यान दे कि मैं केवल होंठ हिलाऊं अगर जरूरी है बोलना, तो नहीं तो वो भी नहीं, आवश्यकता ही नहीं है, इतना मौन में रह सको तो। तो ये एक पहली धारणा है, ये अगर कठोर संस्कार है, क्योंकि आदत तो पड़ी हुई है, बिजनेसमैन है तो बिजनेस में तो क्या नहीं जोर से बोलना पड़ता है, आजकल लोग भी थोड़े बहरे हो गए हैं तो जोर से बोलना भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलते भी आप ध्यान मत दो, दूसरों को नहीं देखो, भले चलो हमको तो कहना पड़ा क्योंकि इतनी साइलेंस का वातावरण, इतना जोर से बोल रहे हैं तो इसलिए वो साइलेंस भंग होती है। तो अगर कोई ऐसा कठोर संस्कार है वो यहाँ गलाना है। दूसरा, मिट्टी की ईंट होती है, कितनी कमजोर होती है पर वो बट्ठे में पकती है तो क्या होता है, इतनी मजबूत हो जाती है कि अगर नीचे भी गिरे तो भी टूटेगी नहीं। तो कोई अगर ऐसी हमारे अंदर कमजोरी है, वो कमजोरी ऐसे निकालना, में इतना मजबूत बनना, डरने का संस्कार है या कोई अन्य अनुमान लगाने का, शक करने का, क्योंकि जो अनुमान, शक, वहम या थोड़ा भी देह अभिमान अगर है, माना ये बहुत कमजोर है, भले बाहर से दिखाई नहीं देता है, वो बाहर से बोलना तो दिखाई देता है परंतु ये सब दिखाई नहीं देता है, और वो संस्कार अगर है तो वो भी निकालना, इतना मजबूत यहाँ से बन के जाना है जो बाबा कहते निर्भय बन के जाना है। कौन है हमारा साथी? कौन है हमारा साथी? जिसका साथी भगवान है उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान? इसीलिए निर्भय आत्मा। और दूसरा, अनुमान, वहम, शक, ये जो कमजोरी के विचार मन में आते हैं, जो सब देह अभिमान के आधार पर ही आते हैं, ये कमजोरी के विचार भी मन से एकदम खत्म हो जाए। और हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतक, पर चिंतन नहीं, पर चिंतन ये बुरी चीज है, पर निंदा, पर ग्लानी, पर चिंतन, पर मत, बाबा कहते बाकी सब पर हटा दो, खत्म कर दो, एक पर जोड़ दो। कौन सा पर जोड़ो? परोपकार। वो पर भले अच्छी बात है पर बाकी जितने भी पर है ना वो पर काट दो, जरूरत नहीं है। बस आत्मचिंतन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है, आत्मविश्लेषण करना है, आत्मसंयम करना है, आत्मबोध अपना अनुभव करना है, मैं कौन हूँ, वो अंदर की शक्ति जमा करनी है, ये इस भट्टी में करना है। तो कमजोर जो संस्कार है, आज भी बाबा ने कहा चोर दरवाजा माया का कौन सा है? चोर दरवाजा, कोई भी कमजोर संस्कार होगा ना कमजोरी का, वहां से माया घुस आएगी। आप देखेंगे एक वो सांकड़ी होती है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, चेन, चेन जैसे होता है, उस चेन की कितनी शक्ति है वो कैसे पता चलता है, कितनी शक्ति है, चेन तो पूरी राउंड होगी पर उसकी कितनी आंतरिक शक्ति है वो कैसे पता चलता है, जो सबसे कमजोर वो क्या बोलते हैं कड़ी है, जो सबसे कमजोर कड़ी होगी ना वही उसकी शक्ति है, क्योंकि वो अगर कमजोर कड़ी टूटी माना टूटा, वो चेन टूट गया भले कितना भी बाकी मजबूत क्यों ना हो, तो इसीलिए उसकी जो कमजोर कड़ी है वही उसकी शक्ति है। किसी दीवार की शक्ति कितनी है वो कैसे पता चलता है, जो सबसे कमजोर ईंट होगी उसी से पूरी दीवार की शक्ति का पता चलता है। सारा घर आपने बंद करके रखा कहीं जा रहे पर एक छोटा सा वेंटिलेटर खुला है तो क्या होगा, माया आ जाएगी वहां से। इसलिए ये कमजोरी का संस्कार ये भी यहाँ मिटा के जाना है, तो आत्मनिरीक्षण करके जाना है कौन सी मेरे अंदर इस प्रकार की कमजोरी है। तो कमजोर संस्कार, कठोर संस्कार, ये सब खत्म करके जाना है। और तीसरा, सोना खाद वाला अगर आग में डालो तो क्या होता है, सारे जो दूसरे जो अंदर धातु है वो सब गलते जाते और अंत में सोना शुद्ध होकर के निकलता है। तो बाबा कहते अनेक जन्मों का पापों का बोझा है सिर पर, अब यहाँ सब नष्ट करना है, सब खत्म करना है, आत्मा को शुद्ध बनना है, क्योंकि बाबा समय की भी चेतावनी कितनी दे रहे हैं, कभी भी कुछ हो जाए, अचानक भी हो जाएगा, उसके लिए हमें एवर रेडी रहना है। तो अचानक होगा, एवर रेडी रहना है, तो ये मौका हमें मिला है ताकि हम अपने अंदर इतनी शक्ति भरे जो उस अचानक का सामना करने लिए तैयार रहे। तो उसके लिए मुझे इतना शुद्ध बनना है कि कोई भी मन के अंदर अशुद्ध विचार नहीं आए, कोई भी प्रकार का थोड़ा भी अशुद्ध विचार आया वो मन को अशुद्ध कर देगा, और उस अशुद्ध मन में कहां बाबा की याद रहेगी। इसलिए अशुद्धता अर्थात कोई भी एक छोटा सा विचार भी आया इससे भी मन मैला हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये भी लक्ष्य रखो, मुझे इतना शुद्ध होना है, इतना शुद्ध होना है, इतना पावन बनना है जो स्वप्न मात्र भी कोई विकार का संकल्प नहीं आए। बाबा स्वप्न मात्र क्यों कहते हैं, क्योंकि वैसे तो संकल्प हमारे कंट्रोल में है, चलो पता चलता है कि ये मेरे अंदर विचार चल रहा है मैं उसको रोक सकता हूँ, लेकिन स्वप्न तो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, पर उसका भी आधार तो संस्कार ही है ना, तभी तो वो स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न मात्र भी न हो उसके लिए, वो संस्कार भी न हो, अंश भी न हो, इतनी पवित्रता बाबा हमसे चाहते हैं। तो वो पवित्रता कैसे आएगी, इतना योग युक्त होंगे हम, इतना देही अभिमानी होंगे हम, इतना अशरीरी स्थिति का अभ्यास होगा हमको, तो इसीलिए इतना मुझे शुद्ध बनना है जो माया मेरे पास आ नहीं सकती। वैसे तो माया यहाँ तो आएगी नहीं, लेकिन वापस जाएंगे हम इतने स्ट्रांग होकर जाएंगे, तो वहां क्या क्या मेरे सामने परिस्थितियां आएगी वो यहाँ नहीं सोचना है। कई बार क्या होता है, कई एक बहन आई, बहन जी यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, लेकिन बहन जी वापस जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा। अरे क्या होगा, क्या होगा, आखिर क्या होगा, क्या होगा माना क्या। तो कहा नहीं बहन जी, मेरे सामने इतनी बातें आती है, ये वो है, बहुत परीक्षाएं आती है, तो यहाँ तो मैं आई हूँ बहुत अच्छा लगता है, पर वापस जाऊंगी फिर वही बातों का सामना करना पड़ेगा। तुम कहते यहाँ रह करके वहां की बातें क्यों सोचते हो, अभी तो यहाँ आ गए हो ना, तो 3 दिन तो यहाँ रहो, 3 दिन इतनी शक्ति भर के जाओ जो वहां जाकर वो बातें गायब हो जाए। अभी ये क्यों लगता है कि वहाँ क्या होगा, अभी ये क्यों नहीं उस समय यहाँ सोचते हो कि यहाँ शक्ति भरनी है, शक्ति भरनी है, इतनी शक्ति भरनी है, जो इतनी शक्ति आ जाएगी, जो वो बातें इतनी गौण हो जाएगी, इतनी मानो हल्की हो जाएगी, क्योंकि आप ऊपर चले जाएंगे, आप शक्तिशाली होंगे। अगर यहाँ बैठ करके वहां की बातें सोचेंगे तो यहाँ शक्ति कब भरेंगे? तो यहाँ तो शक्ति भरने का समय है ना, यही स्थान है शक्ति भरने का। वहां होगा जो होगा देखा जाएगा, अभी क्यों उसका सोच रहे हो, अभी तो वर्तमान में रहो। इसीलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा है, पास्ट माना जो बीत गया वो तो एक इतिहास था, उसको भूल जाओ, उसको थोड़ी अभी याद करना है। यहाँ बैठ करके पहले मैं ऐसा था बहन जी, बहुत कमजोर था, बहुत पीता था, बहुत ये करता था, बहन जी मैं बहुत बदल गया हूँ, बहुत बदल गया हूँ, ये भी कहने से भी क्या होगा, बदल गए हो, इतना बदलना है जो देवता बनना, उसकी भेंट में तो कहाँ देवता है हम। कई कहते हैं ना हमेशा फेल होते रहते हैं, और एक बार पास हो गए कि मैं तो पास हो गया, मैं तो फेल ही होता था, मैं तो फेल ही होता था, वो फेल फेल को ज्यादा याद कर रहा है, पास को कम है? और जो होशियार होते हैं अगर उसको 98 मार्क्स भी आई ना तो भी कहेगा मेरे 2 मार्क कहाँ चले गए, 2 मार्क्स कम क्यों हुए, मुझे 100 out of 100 मिलना चाहिए। तो वो 100 से अपना हिसाब देखता है। और जो कमजोर होगा वो 40 मार्क्स मिल गया, हमेशा 20-30 मिलता था, अभी चलो 40-50 मिला, पास हो गया, तो वो 0 से गिनती कर रहा है। तो 0 से गिनती करना है या 100 से गिनती करना है? 0 से गिनती करना माना कमजोर स्टूडेंट है, और 100 से करते कि मेरा 2 कम क्यों हुआ, मुझे 100 में से 100 मिलना चाहिए, क्योंकि बाबा ने लक्ष्य तो बहुत ऊंचा दिया है, मानव से देव बनना है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के लिए हाथ उठाते हैं, राम सीता के लिए भी हाथ नहीं उठाते हैं। तो इतना ऊंच देव पद पाना है उसके लिए पहले फरिश्ता बनना है, बाप समान बनना है, घर जाना है, संपूर्ण बनना है, कोई भी धर्मराज की सजा न मिले इतना रिस्पेक्ट के साथ हम जाएं, ये जो लक्ष्य है उस तक भी पहुंचना है, और उस तक पहुंचना है। और हम कहते हैं बहन जी मैं तो क्या ऐसा था, शराब पीता था, ये अशुद्ध खाता था, बहन जी मैं तो बहुत बदल गया हूँ, और बड़ा खुश हो गया है, क्योंकि वो पास्ट को याद कर रहा है। तो पास्ट को याद करना है या वर्तमान में शक्ति भरनी है? कई फिर फ्यूचर के कैसे सोचते हैं, बाबा तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन पता नहीं कैसे बन सकूंगा, कहाँ मैं बन सकूंगा, हाँ इतने तक कहाँ पहुंच पाऊंगा, मेरे लिए मेरे अंदर तो वो शक्ति तो है नहीं, बाबा तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कहते, इतना बड़ा बड़ा सम्मान बाबा देते हैं, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ ना? तो बाबा उनके लिए भी कहते पढ़े लिखे नहीं हूँ अच्छा है, क्यों? क्योंकि जो बहुत पढ़े लिखे हैं ना उनको अभिमान होता है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो उनको बाबा कहते हैं ऐसा भूल जाओ, जो भी पढ़ा है वो भूल जाओ, और पढ़े ही नहीं है तो अच्छा ही बात है ना, भूलना तो नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये भी कभी नहीं सोचे कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी, क्यों नहीं पढ़ सकते? कोई कन्या कहे मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मैंने तो अभी दुनिया नहीं देखी, अभी तो बहुत कुछ है, बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं, ये सब है। तो बाबा कहते थे मम्मा को देखो, मम्मा आई थी उस समय 15-16 साल की थी, और एक धक से स्वाहा हो गई, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, एक धक से, ये नहीं सोचा मैं तो अभी जवान हूँ, इतनी होशियार थी मम्मा, इतने अवार्ड्स लेती थी स्कूल में, नामी ग्रामी थी, बहुत नाम था उनका, इतना सुंदर गाती थी, इतना नृत्य कला थी, संगीत कला, वाद्य कला, ये सारी थी उसमें, हारमोनियम बजाती थी, सितार बजाती थी, ये सब उनके स्कूल में सिखाते होंगे। लेकिन जैसे बाबा की बनी, एक थक से सब स्वाहा किया, तो कोई कन्याएं बाबा के पास आती थी, बाबा अभी तो मैं तो जवान हूँ, अभी तो बहुत को दुनिया देखनी है, बाबा कहते मम्मा को देखो, कैसे मम्मा ने एक धक से त्याग किया। फिर कोई बूढ़े आते हैं, बाबा मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अभी क्या मैं पुरुषार्थ करूँ, तो बाबा कहते इसको देखो, ये हम जिन से आपका कितना बूढ़ा है 93 वर्ष का बूढ़ा था ना। दादी जानकी को हम देखते हैं, किसी ने दादी जानकी से पूछा, दादी आप 101 साल की हो गई है, इस उम्र में भी आपके ने इतना उमंग उत्साह कैसे है, इतना उमंग उत्साह 100 साल से ऊपर हो गई, नहीं तो कोई आजकल तो 25-30 साल 50 साल बस जैसे गए गुजरे हाँ, मतलब गए काम से ऐसे अनुभव करते बस। तो और ये इतनी आयु लेकिन कैसे इतना उमंग उत्साह अभी तक भी है, जो बाबा उसको चला रहा है, उसकी शक्ति को चला, उसकी शक्ति और बढ़ती जा रही। जो देखो लंदन में बैठी है, अभी लंदन में है, सुबह से रात तक कैसे दादी सेवा कर रही है लंदन में पहुंच करके। इस उम्र में भी हर साल वहां लंदन वाले सोचते हैं पता नहीं दादी अगले साल आएगी या नहीं, फिर पहुंच जाती बुलाते तो रहते हैं ना, बुलाते रहते हैं, तो इसीलिए वो खींच उनकी है, तो दादी भी देखो पहुंच जाती है वहां। तो इसीलिए और हमें कुछ नहीं सोचना, मैं तो नहीं कर सकूंगी, मैं तो नहीं हो सकेगा, मैं तो ये ऐसे नहीं हूं, नहीं, भगवान के बने हैं तो चमत्कार हो जाते हैं। चमत्कार जब होते हैं तो कुछ पता चलता है क्या क्या से क्या हो जाता है। इसीलिए भविष्य को उस रूप में अभी नहीं देखो, पास्ट को भी नहीं देखो, पर प्रेजेंट में मैं क्या हूं। तो कई बार कहते प्रेजेंट जो है वो गिफ्ट है, वो एक सौगात है, तो जो वर्तमान में हमको सौगात मिली है उसका पूरा उपयोग करो, उसको सफल करो। ये श्वास, समय, संकल्प, शक्ति, ये हमारे लिए अभी ऐसा खजाना है इस समय, जो हमको पूरा सफल करना है। माना सफल करना, माना उसका हर एक हर घड़ी हर श्वास को हमें सफल करना, अर्थात उसको यूज करना है, उसमें से कुछ फायदा लेना है, व्यर्थ न जाए। इसीलिए 3-4 दिन अगले हैं, तो ऐसा न हो कि चौथे दिन कहे बहन जी हम तो जा रहे हैं लेकिन बहन जी मैं इतना नहीं कर सका। हाँ, ऐसा किसी के मुख से न निकले। कोई यहाँ तक अगर कोई कहे बहन जी 3 दिन तो बहुत अच्छा लगा लेकिन अभी और हमें हमको रहने दो ना, हम कहेंगे नहीं जाना पड़ेगा, 3 दिन में आपने पूरा क्यों नहीं पाया, क्योंकि उस समय सोच रहे थे मैं ठीक है और भी कुछ रह जाऊंगी दिन ना, मुझे अगर छुट्टी मिलेगी तो वो उसकी सोच में चले गए, जो 3 दिन है उसी का भी पूरा लाभ नहीं लेते। तो इसीलिए वो भी नहीं सोचो, लेकिन इस 3 दिन के अंदर मुझे पूरा लाभ लेना है और यहाँ से सच्चा सोना बन के जाना है, सारी खाद निकालनी है, बाप समान बनना है। अब बाप समान बनना ये तो बहुत ऊंचा उद्देश्य है। ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं किया, मम्मा ने क्या नहीं किया, वो तो लंबा इतिहास है। कैसे ब्रह्मा बाबा 33 वर्षों के अंदर 36 से 69 केवल 33 वर्ष के अंदर कैसे ब्रह्मा बाप संपूर्ण हुए। एक विशेषता ब्रह्मा बाबा की बहुत जबरदस्त थी, जो बाबा के अंदर में आता था ना ये करना है, बाबा करके ही छोड़ते थे। कभी बाबा ये नहीं सोचते थे कोई बात नहीं 8 दिन के बाद कर लेंगे, 10 दिन के बाद कर लेंगे, नहीं करना ही। इसलिए बच्चों को बाबा ताकीद करते हर मुरली में। कई बार बाबा कहते बच्चों को इतना कहते फिर भी बच्चे अभी अलबेले हैं, बच्चे अभी तक नहीं कर पाए हैं। जगदीश भाई का बाबा मिसाल देते थे, जगदीश भाई को बाबा ने कैसे इतना बड़ा वरदान दिया किताब लिखने का। बाबा के पास 3 भाई आए थे, जगदीश भाई की तरह ही होशियार थे वो भी, तो बाबा ने तीनों को काम दिया कि ये पैम्फलेट है इसका, इसके अंदर क्या लिखना है, किसी प्रोग्राम का कुछ था, ये लिख करके ले आओ और कल सुबह बाबा आपसे पूछेंगे। तीनों को कहा अपने अपने ढंग से लिख के आओ। तो क्या हुआ कि जैसे ये कमरे में गए ना खाना पीना खा के, सोचा हम लिखेंगे, तो उसी समय बिजली चली गई, मधुबन में बिजली चली गई। वो जनरेटर तो उस समय था नहीं, तो बिजली चली गई तो कैसे लिखेंगे। तो उन दोनों को तो बहाना मिल गया कि बाबा अगर कल पूछेंगे बिजली चली गई तो बाबा को कहीं बाबा बिजली चली गई तुम कैसे लिख सकते थे। लेकिन जगदीश भाई ने कहा नहीं, बाबा ने कहा है तो लिखना है। तो कहां से बिजली आएगी, या मोमबत्ती भी नहीं थी, कुछ नहीं था, मना कुछ नहीं होगा। तो सोचा क्या करूं, टॉर्च भी शायद नहीं होगी। तो बाहर गए रोड पर, और रोड पर स्ट्रीट लाइट चल रही थी, वो जल रही थी। तो वहां बैठ करके, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके उसने लिखा और पूरा करके फिर आके सो गया। वो तो सो ही गए थे, उनको तो पता भी नहीं। तो सवेरे जब बाबा उनसे मिले, बाबा ने पूछा बच्चे आपने लिखा। अब दो को तो बहाना मिल ही गया था, तो बाबा कैसे लिखते, लाइट नहीं थी, ये नहीं थी, वो नहीं। तो फिर जगदीश भाई से पूछा, उसने कहा हाँ बाबा लिखा है। तो फिर बाबा ने उनसे पूछा इसने लिखा, आपने नहीं लिखा, ये भी तो आपके साथ ही था, तो कैसे लिखा बच्चे आपने। तो कहा मैं रोड की लाइट वहां गए जाकर उसके नीचे लिखा। तो बाबा ने कहा ये मेरा सच्चा बच्चा है, और बाबा इनको वरदान देते हैं कि ये सारे जो यज्ञ की किताबें हैं ये बच्चा लिखेगा। तो उसके बाद बाबा का वरदान था, इतनी सारी जो पुस्तकें हैं ना यज्ञ की, ये सब जगदीश भाई ने लिखी हुई थी। तो ये कलम की शक्ति ये बाबा ने जैसे उनको वरदान रूप में दी, किस आधार पर, आज्ञाकारी बनी। बस पहले तो उनको ये पता भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा लिख भी सकता हूँ। थे प्रोफेसर, थे बहुत बड़े प्रोफेसर, थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट, थे अपने कॉलेज में पढ़ाते थे, तो बहुत कुछ उनका बड़ा पद था, लेकिन इतना वो लिखने का नहीं था। खुद अपना अनुभव उन्होंने सुनाया था। तो कैसे बाबा का वरदान मिल गया। और ब्रह्मा बाबा के अंदर ये संकल्प था, और वो पता चलता है। कैसे पता चलता, अब भी अव्यक्त बाप दादा की जब मुरली चलती है तो उसमें ब्रह्मा बाप बोले, शिव बाप बोले, कभी कभी डायलॉग आता है दोनों का संवाद। अब उसमें ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं कि बाबा अभी तक ये बच्चे तैयार क्यों नहीं हुए, अभी तक तैयार नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा इंतजार कर रहे हैं वतन में हम सबका, स्वर्ग का गेट खोलने के लिए, या उसके पहले परमधाम का गेट खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि परमधाम में ऐसे तो नहीं जा सकेंगे जब तक सब तैयार न हो। पुरानी दुनिया का विनाश भी ऐसे नहीं होगा जब तक नई दुनिया की तैयारी पूरी नहीं हुई है। तो इसीलिए ब्रह्मा बाप इंतजार कर रहे हैं, बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए। तो शिव बाबा उनको आथर देते हैं, बच्चे सब ड्रामा अनुसार हो रहा है। आज भी बाबा ने कैसे कहा, ड्रामा अनुसार बच्चों की कैसी स्थितियां हैं अंदर, हाँ कैसा उनका, कैसी अवस्थाएं हैं, लेकिन ये सब ड्रामा में नूंद है। इसलिए साक्षी होकर के हर एक को देखना, हर एक अपने को देखे और बाकी का साक्षी होकर के देखे। ये नहीं ऐसे ये क्यों नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नहीं, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने अंदर में ये हिम्मत रखी और संकल्प किया, और कैसे बाबा संपूर्ण हुए, आप लोगों को मालूम है ना। कैसे गुलजार दादी ने सबसे पहले अव्यक्त ब्रह्मा को देखा वतन में, सूक्ष्म वतन में। उसके पहले सूक्ष्म वतन का किसको पता नहीं था, परम धाम का साक्षात्कार होता था, स्वर्ग का, विनाश का, कृष्ण का, ये सब होता था, लेकिन सूक्ष्म वतन का नहीं। तो गुलजार दादी सबसे पहली आत्मा थी जिसने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया, और उसने अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को देखा। तो अव्यक्त ब्रह्मा लाइट के आकार में, प्रकाश की काया में देखा, तो दादी को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो कैसे, वो डर गई ना, जैसे कोई लाइट में कोई देखे तो डर जाए, तो नीचे आ गई। और फिर बाबा से कहा, बाबा ऐसे आप जैसी कोई आकृति थी पर मैं समझ नहीं सकी, मैं तो डर गई। तो बाबा ने उसको कहा कि बच्ची आपने उनसे पूछा क्यों नहीं कि आप कौन हो, आप जैसी आकृति तो मेरे जैसी आकृति कहाँ देखी, कैसे देखी, आप अभी दोबारा जाओ और अगर वो आकृति आपके सामने आई उनसे पूछो आप कौन हो, आप कौन हो, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को भी शुरू में तो ये सब बातें उनके लिए भी तो सब नई थी ना। तो जब दोबारा उसको अनुभव हुआ तो पूछा आप कौन हो, तब उस आकृति ने कहा, उस सूक्ष्म ब्रह्मा बाप ने कहा, संपूर्ण ब्रह्मा बाप ने कहा, मैं ब्रह्मा जो साकार में है उनका संपूर्ण स्वरूप हूँ और यही साकार ब्रह्मा ये संपूर्ण बनेगा, ये इनका संपूर्ण स्वरूप है। तो ब्रह्मा बाबा को लगा कि मेरा संपूर्ण स्वरूप वतन में है, मुझे वो संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। तो कैसे बाबा इतनी तपस्या करते थे मुझे संपूर्ण बनना है, और उसी अनुसार कैसे बाबा इतना जल्दी संपूर्ण बने। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो उनसे पहले बाबा दादी से कहते थे, गुलजार दादी से, कि जाओ वतन में देख के आओ मैं बाप, ये बाप उस संपूर्ण रूप के कितना नजदीक है, क्योंकि नजदीक हो रहा है, नजदीक हो रहा है, वो देखती थी, अनुभव करती थी। और जब बाबा अव्यक्त हुए और फिर वतन में गई तो देखा वो दो रूप गायब, वो भी एक ही संपूर्ण रूप देखा। तब आके दादी को बताया कि ये ब्रह्मा बाप संपूर्ण हुए और कैसे ब्रह्मा बाप ने कहा कि मैं गया नहीं हूं पर केवल कमरा और कपड़ा बदली किया है, ये स्थूल देह त्याग कर सूक्ष्म देह धारण किए और स्थूल वतन त्याग कर सूक्ष्म वतन घर है, वही बाबा का वतन है। तो इसीलिए बाबा गए नहीं है, बाबा मिलते रहेंगे। तो इतना जल्दी संपूर्ण बने किस आधार पर, एक लगन थी, मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। मम्मा की भी इतनी लगन थी, मम्मा का फिर पाठ दूसरा था। मम्मा जब शरीर छोड़ा तो लगन तो बहुत थी, बहुत तपस्या करती थी, लेकिन शरीर का थोड़ा हिसाब किताब था। तो जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब संदेश यही आया कि ये बाबा एक नया राज खोल रहे हैं कि एडवांस पार्टी की, जैसे ये लीडर यहाँ थी, मम्मा थी ना माँ, लीडर थी, इसी प्रकार अब एडवांस पार्टी में ये लीडर बनेगी, एडवांस पार्टी की लीडर। और फिर देखो कैसे अभी एडवांस पार्टी अपना कार्य गुप्त रूप से कर रही है, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब हम तैयार होंगे। प्रकृति भी इंतजार कर रही है, वो प्रकोप लाने लिए तैयार है, विनाश, वैज्ञानिकों ने तो सब कुछ बना दिया है, लेकिन ये सब इंतजार किसका कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, हमारा। और हम क्या कर रहे हैं, अभी तक नाच नखरे कर रहे हैं ऐसे लेकिन नहीं, इसीलिए आपको ये तीन दिन मिले हैं, कैसे एक इतना ऊंचा लक्ष्य रखे, हमको बाप समान बनना है। तो यहाँ तीन दिन तो और कोई गोरख धंधे दुनिया के है ही नहीं, आपको वहां होंगे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ इतनी शक्ति भर के जानी है, जो वो शक्ति के आधार से वहां जो कुछ भी आपकी बातें वो ऐसी हल्की हो जाएगी, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले जाएंगे, वो चीज उतनी होगी, वो ऐसे नहीं कि वो कम होगी, लेकिन आप ऊंचे चले जाएंगे तो वो आपको क्या लगेगी, गौण लगेगी, हल्की लगेगी। जैसे बाबा कहते हवाई जहाज में ऊपर गए तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वो भी कैसे लगती है, हाँ छोटे छोटे खिलौने लगते हैं, और नीचे है तो सब बड़े बड़े लगते हैं, और ऊपर चले गए तो सब छोटा छोटा लगता है। तो हम ऊंचे चले जाएंगे, उसको हम नहीं बदल सकते, पर हम ऊंचे चले गए तो वो तो सब छोटा छोटा ही लगेगा। और जब कैसे छोटा लगेगा, क्योंकि बिंदु बनना हमको आ जाएगा, जो बाबा कहते बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। तो जितना ही बिंदु बने, बिंदु को याद करते, बिंदु लगाए, हम उतने ऊंचे चले जाते, इतना ऊंचे जाते, क्योंकि सार बनते जाते हैं, सार बनते जाते हैं। अभी तक विस्तार में थे, छोटी बात को बड़ा करना आता था, पर बड़ी को छोटा करना ये मुश्किल होता है। अब जब ये बाबा को याद करते, योग में रहते, न्यारे प्यारे बनते, अशरीरी बनते, माना बिंदु बन जाते, देह से न्यारे हो गए तो बिंदु बन गए और बाबा को उस बिंदु रूप में देखते, और हर बात जो बात आए इसको बिंदु लगाते, तो मन बुद्धि कहाँ भटकेगा ही नहीं, बिंदु लगा दिया। तो जितना ही सूक्ष्म अंतर में हम बनते जाते उतना ही हम बेहद में ऊंचे चले जा सकते हैं। परमात्मा को क्या कहते हैं, परमात्मा निराकार है। तो निराकार का मतलब क्या है, कोई आकार नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आकार ऐसा है जो कोई प्रकृति जैसा आकार नहीं है। जितना ही वो बिंदु है उतना ही वो सिंधु है, जितना ही वो बिंदु में सिंधु है वो, ये आकार कोई प्रकृति का आकार नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति है। कई कहते बिंदु कैसे, इतना छोटा बिंदु क्या शक्ति होगी, पर इतना ही बिंदु और इतना ही शक्तिशाली, ये परम शक्ति है। बड़ी चीज होने की जरूरत नहीं है जो शक्तिशाली बने। आजकल तो विज्ञान में क्या है, और ही छोटा 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 सब सूक्ष्म बनाते जा रहे हैं। हमको वो एक वीडियो वाला भाई मिला, मैंने कहा कि आपके पास इतनी बड़ी पहले वीडियो कैमरा भी, तो ये बहुत छोटी है। कहता है बहन जी ये उससे ज्यादा शक्तिशाली है। पहले वीडियो बड़ी बड़ी कैमरा होती थी बोझ उठाना, अभी तो जरूरत ही नहीं है, हा? इतने छोटे हो गए और उससे ज्यादा शक्तिशाली। एक आपके मोबाइल में सारी दुनिया है, क्या नहीं हो सकता है। पहले तो टेप मशीन अलग ले जाओ, कैमरा अलग ले जाओ, ये अलग ले जाओ, ये अलग अलग अलग, अभी सब कुछ एक मोबाइल के अंदर, एक मोबाइल में सब कुछ। और इतना कितना छोटा मोबाइल होता है, एक के अंदर पूरी दुनिया है, इसलिए अलग अलग कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो आत्मा बिंदु है, लेकिन उस बिंदु में, आत्मा में भी कितनी शक्ति है, कोई कम नहीं है। परमात्मा भी बिंदु में परम सिंधु है। अब उसी प्रकार इतना सूक्ष्म बनते जाना, सूक्ष्म बनते जाना। सूक्ष्म बनने के लिए कछुए का भी मिसाल बहुत अच्छा है। कछुआ क्या करता है, कोई बात सामने आई, अपने अंग सिकोड़ लेता है, बिल्कुल जैसे पत्थर जैसा हो जाता है। हिलाओ तो भी हिले नहीं, इतनी अंतर में वो पत्थर जैसा हो गया, अपनी सुरक्षा करना जानता है। तो आत्मा भी अपनी सुरक्षा कैसे करती है, अंदर चली गई बस, यहाँ भ्रकुटी की कुटिया में बैठ गई, सारी दुनिया से दूर। और पक्षी अपनी सुरक्षा कैसे करता है, उड़ जाता है। बिल्ली उसके पीछे पड़ी तो पक्षी डर थोड़ी जाता है, क्या करता है, उड़ जाता। बिल्ली तो नहीं उड़ सकती तो पक्षी तो उड़ जाएगा। तो इसी प्रकार मैं आत्मा भी पंछी हूं, मैं आत्मा बिंदु हूं। तो बिंदु भी बने सिंधु भी बने, जैसे बाबा भी बिंदु और सिंधु है, ये आत्मा में भी शक्ति है। लेकिन ये तब होगा जब इतने काल का अभ्यास होगा, क्योंकि अंत में यही काम आएगा, अंत में और कुछ काम नहीं आएगा। कहते हैं ना अंत के समय केवल जो हमारे किए हुए कर्म हैं वही काम आते हैं। तो अंत में हमारे कर्म अगर श्रेष्ठ हैं तो भविष्य भी श्रेष्ठ है। लेकिन अंत में अगर ये अवस्था आ सकती है उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, ताकि उस समय और कोई आत्मा याद न आए। एक बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर कोई आत्मा याद आई तो बाबा कई बार कहते थे, आते हैं बच्चे कोर्स करने, उनको कहा जाता है किसी को याद नहीं करना, अगर किया तो दोबारा सब, फिर दोबारा, तो दोबारा करना पड़े क्योंकि कोई याद न आए। तो अंत में कोई याद न आए सिवाय एक बाबा के, एक सेकंड में आत्मा शरीरी बन जाए उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो भले बाबा कहते अचानक, वो अचानक होने के लिए एवर रेडी बनना है, और एवर रेडी बनने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, तभी तो एवर रेडी बनेंगे ना, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है तो हम तैयार है। जैसे स्टूडेंट पढ़ाई में होशियार है और पढ़ता ही रहता है, ऐसे नहीं कि लास्ट में जाके पढ़ेगा, पढ़ता ही रहता है, तो कभी भी परीक्षा आ जाए उसको डर नहीं है, वो तैयार है। वेवर रेडी है क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है, क्योंकि अचानक भी आ सकती है परीक्षा, पर फिर भी वहां जो परीक्षाएं होती है वो पहले से पता चल जाता है कि फलानी तारीख फलाने स्थान पर फलाने दिन इतने घंटे का पेपर होगा, सब और बाकी सब बातों का पता चलता है, लेकिन पेपर में क्या होगा कौन से प्रश्न होंगे ये पता नहीं होता है, बाकी सब पता होता है, लेकिन यहाँ उसका भी इसके विरुद्ध है। कैसे? परीक्षा पेपर में परीक्षा का वो क्वेश्चन क्या वो पता है, वो पता कैसे है, वो एक सेकंड का क्वेश्चन है, प्रश्न है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, एक बाबा के सिवाय कोई देहधारी की याद नहीं, लेकिन वो परीक्षा में पास होना, क्योंकि एक सेकंड का पेपर है ना, कई पेपर्स होते हैं ना क्वेश्चन पेपर, उसमें केवल हाँ और ना लिखना होता है बस, या तो हाँ या तो ना, तीसरा कुछ अलग लिखना नहीं होता है, हाँ या ना लिखने में कितनी देर लगती है, या तो टिक मार्क या तो क्रॉस, बस यही लिखना होता है, एक सेकंड लगता है, तो अंत का पेपर भी एक सेकंड का होगा, या तो बाबा की याद या तो कोई देहधारी की याद। तो अगर एक बाबा के सिवा और कोई याद नहीं, वो जो क्वेश्चन पेपर एक सेकंड का होगा उसके लिए वो कब होगा पता नहीं, कब होगा, किस रूप में आएगा, कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो कुछ पता नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, वो हर वक्त उसका अभ्यास चाहिए, और यहाँ तो आपको वो मौका है, तो उस एक सेकंड के पेपर के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, एवर रेडी होना है, क्योंकि अचानक होगा। तो इसीलिए अभ्यास क्या करेंगे, जैसे हमको यहाँ समय मिला है ये लक्ष्य रखना है, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना संपूर्ण स्वरूप का अनुभव किया वो बनना है, हमारा भी तो वैसा ही संपूर्ण स्वरूप है ना वतन में, केवल ब्रह्मा बाबा थोड़ी है, ब्रह्मा बाबा केवल नहीं है, हम भी हैं, तो हम भी अपना वो संपूर्ण स्वरूप देखें और ब्रह्मा बाप का भी देखें कि कैसे ब्रह्मा बाप भी संपूर्ण बने, मुझे बनना है, बाप समान बनना है, न्यारा प्यारा बनना है, अशरीरी बनना है, घर जाना है, और ये सबसे अच्छा अनुभव कब हो सकता है, अमृत वेले, अमृत वेले ये बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हैं। बड़ी दीदी जी थे ना मनमोहिनी दीदी जी, वो हम सबको यही पाठ पक्का कराते थे, कहती थी रोज सवेरे सवेरे उठकर 5 केला खाओ, खा सकते हो, रोज सवेरे सवेरे उठकर 5 केला खाओ तो इतनी शक्ति आपको मिल जाएगी सारे दिन के लिए, खा सकते हैं 5 केला, कौन सा केला, वो केले की बात नहीं, तो कहती थी 5 केला, तो केले से जुड़ते हुए शब्द है, मैंने केला माना अकेला, तो सवेरे उठो सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग, कोई देहधारी की याद ना आए, और गुड मॉर्निंग किया माना पहले क्या, आत्मा अकेली अकेले आए हैं ये पहला केला, अकेले जाना है ये दूसरा केला है ना, वो गीत है ना, न घोड़ा होगा न गाड़ी होगी, तुमको पैदल जाना है, अकेले जाना है, अकेले जाना है, तो इसीलिए अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में उस समय जब उठो बचाए 5-6 और सोए हुए हैं, या वो भी उनके भी खटिया होगी और बहने हैं साथ में, ये नहीं ये उठी कि नहीं उठी, वो उठी कि नहीं उठी, हाँ वो उठी कि नहीं, नहीं बस मैं उठी और एकदम अकेले में अकेला होकर अकेले को याद करना है, हो गया 5 केला, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में माना एकदम एकांत मैं अकेली हूँ, औरों को नहीं देखना है, ये अभी तक उठी नहीं, 4 बज गया अभी तक उठी नहीं, हाँ भले वो उसका पाठ, पर मैं उठी और मुझे क्या करना है वो देखना है, इसलिए अकेले में अकेला होकर मन से भी कोई देहधारी की याद नहीं और अकेले बाबा को याद करना, इसीलिए बाबा कहते उठो गुड मॉर्निंग बाबा, हाँ और कोई देहधारी की याद ना आए। तो ये सबसे पहला कदम अमृत वेले के लिए, और वो भी तब होगा अमृत वेले और कोई याद नहीं आएगा, बस एक बाबा ये पांच केले खा सकेंगे। जब रात को सोते हैं तो भी उसी स्थिति में सोते हैं, अगर रात को बातें करते करते कुछ और देख सुनते देखते पढ़ते मतलब उसके ऐसे सोते हैं तो उसी अंत मते सो गते फिर सवेरे वही संकल्प उठेगा आएगा। इसलिए अंत के रात के समय उसका बड़ा प्रभाव पड़ता अमृत वेले पर। तो रात को बाबा कहते चार्ट लिख करके बाबा को दे दो, कैरी फॉरवर्ड नहीं करो, अकाउंट लिखते ना हिसाब किताब लिखते हैं, तो जो रात को हुआ फिर वो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, उसको आगे नहीं बढ़ाना है सुबह के लिए। वो रात पूरी हुई कहते रात गई बात गई, रात गई बात गई, तो वो बात गई बस संपूर्ण हुआ, बाबा सब आपको अर्पित, जो हुआ जैसे हुआ जैसे दिन बीता पूरा हुआ, वो लिपट गया रील में। फिर कलब के बाद आएगा, हाँ उस समय नहीं ये नहीं सोचते ऐसे नहीं करते तो ये नहीं होता था, ये नहीं होता था तो ये नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, बस एक सेकंड में फिर बिंदु बन गए और बाबा की गोद में चले गए। तो रात को भी ये पांच केले खाओ, तो रात को भी पांच केले खाए और सुबह पांच केले खाए तो क्या होगा, कितनी शक्ति भरेगी, कितनी शक्ति भरेगी, दस केले हो जाएंगे, हाँ तो इतनी शक्ति भरनी है। और जब बाबा के यहाँ आओ, हो सकता है सुबह बारिश भी बहुत हो, थोड़ा ध्यान भी रखना है, हाँ ठंड भी होगी थोड़ा ध्यान रख करके आना, ऐसे नहीं भीग करके आए फिर तबीयत बिगड़ जाए, थोड़ा तबीयत का भी ध्यान रखना है। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो बट्टी भी बहुत अच्छी कर सकेंगे और यहाँ ये तीन दिन पूरा पूरा लाभ ले सकेंगे, ठीक है हा? तो लक्ष्य मिला और कैसे अमृत वेला बनाना है वो भी पता चला, ताकि इतनी शक्ति भर के जाए जो यहाँ से बिल्कुल बदल कर जाए। और जब वहाँ पहुँचो सब कहे अरे बट्टी करके आए, एकदम परिवर्तित होकर के गए और आपको देख करके अनेक आत्माएं प्रेरणा ले कि मधुबन मधुबन ज्ञान सागर का कंठा वहां से बट्टी करके आए, तो सारी दुनिया का और आकर्षण मधुबन की तरफ बढ़े, ठीक है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
बहुत बहुत तहे दिल से आदरणीय दीदी जी का हम शुक्रिया करेंगे कि आज भट्टी के शुभारंभ में ही हमें अच्छी तरह से सशक्त कर दिया है, तन से मन से सब प्रकार से ये भट्टी में एक गहन अनुभूति लेकर के जाना है, इसके लिए स्व को तैयार करवाया है। एक बार फिर सबकी तरफ से बहुत बहुत दिल से थैंक्स करते हैं। और हमारे बीच आप सबका बहुत दिल से स्वागत करने के लिए साज और संगीत, गीत के मधुर शब्दों के साथ हमारा मधुरवाणी ग्रुप, खासकर हमारे सतीश भाई और हल्दर भाई दोनों ही यहाँ हमारे बीच है, आपका भी हम बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं। और ये बाबा की कितनी बड़ी मिली हुई देन है, विशेषता है, जो जैसा मौका जैसे बाबा के बच्चे जैसा स्थान उस हिसाब से उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए गीत के शब्द आप खुद तैयार करते हैं, लिखते हैं और अपनी भावनाओं को शब्द का देह दे करके उसे हम सब के सामने सुर और ताल के लय में अच्छी तरह से रसास्वादी कराते हैं। मैं हमारे दोनों ही भाइयों का
ओम शांति। मधुबन में आना किसी किसी भाग्यशाली के हिस्से में होता है। नींद से जींद जगाएगा, नींद से जींद जगाएगा, जग को राह दिखाएगा, सबको प्रभु से मिलाएगा, घर घर स्वर्ग बनाएगा। शक्ति भरने भट्टी करने आए हैं जींद वाले, मधुबन में स्वागत करते बाबा सिंह मधुबन वाले। हम सब आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे हल्दर भाई ने यह धुन बनाई है, बहुत प्यारी सी है, सुनिए।
का हो जाए बका हो जाए, सहज योग लग जाए, मन बाबा बाबा गाए, प्रभु प्रीतम से प्रीत लगा सब बात पाने वाले, मधुबन में स्वागत करते बाबा संग मधुबन वाले। मधुबन बना है सुन वतन, हम बन गए फरीड़े, दूर हो गए देहवान से टूटे हद के रीड़े, मधुबन बना है सूक्ष्म वतन, बन गए आप भरिश्ते, दूर हो गए देहवान से टूटे हद के रीड़े, अब नीचे ना आना है बाबा संग मिलन मनाना है, बारिश में बाबा के बच्चे आए बारिश वाले, मधुबन में स्वागत करते बाबा संग मधुबन वाले, शक्ति भरने भट्टी करने आए गीले वाले, मधुबन में स्वागत करते बाबा संग मधुबन वाले, नींद नींद जगाएगा जग को राह दिखाएगा, सबको प्रभु से मिलाएगा, घर घर स्वर्ग बनाएगा, शक्ति भरने भट्टी करने आए जीने वाले, मधुबन में स्वागत करते बाबा संग मधुबन वाले।
आप सबका, आप दोनों ही भाइयों का भी बहुत 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 स्वागत और शुक्रिया, जो तहे दिल से बहुत प्यार से हम सबका मधुबन में आपने स्वागत किया।